بالظبط والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو بدھ کی صبح کی کلاس میں ہم کھانے کا انتظام یعنی فوڈ مینجمنٹ پڑھ رہے تھے. ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ دروس امور خانہ داری میں حسن انتظام میں سے، تو حضرت نے اس کی تمہید عورتوں کے لیے ایک دلچسپ عنوان سے باندھی تھی، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ واقعی یہ عورتوں کے لیے دلچسپ عنوان ہے، ورنہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو ان میں شیاطین کی بھرپور محنت ہے کہ اس عنوان کو عورتوں کے لیے سب سے زیادہ غیر دلچسپ عنوان بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ شیاطین کی محنت ہے، وہ جاری رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کی طرح جیسے جاری تھی پہلے دن سے، ہے نا. آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے نکالا تو اس وقت سے اس کی محنت جاری ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے اور یہ کل بھی جاری رہے گی. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی بھی محنت جاری رہے گی. ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ انسانوں کے سامنے دلچسپ بنا کر کے پیش کیا جائے. صحیح ہے، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اور جو جو امور اور جو رولز بنائے ہیں ان کو ان کے سامنے دلچسپ بنا کر کے پیش کرتے رہیں، اور عورتوں کے سامنے ان چیزوں کو دلچسپ بنا کر کے پیش کرتے رہیں جن کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی محنت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ محنت بھی چلتی رہے گی، شیاطین کی محنت بھی چلتی رہے گی اور اللہ والوں کی محنت بھی چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ کی اس محنت کو جو ہے وہ آگے بڑھانے میں اپنا کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کری. اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کا احسان ہوگا ہمارے اوپر، ورنہ اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس چھوٹی سی تمہید کے ساتھ ہم آج کی کلاس جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں ٹپس جو ہے نا وہ پڑھ کے مکمل کر گئی تھی، کچن ٹپس. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد حضرت نے آگے بات فرمائی جس کا کہ کتاب شائع کرنے والے نے یہ عنوان بنایا کہ مہمان کا ثواب مفت میں، مہمان کا ثواب مفت میں. تو یہ تو کتاب لکھنے والے نے یا کتاب چھاپنے والے نے یہ ہیڈنگ بنائی نا، لیکن حضرت نے تو بیان میں ایسی ہیڈنگز نہیں بنائی تھیں. تو حضرت نے بیان میں یہ فرمایا تھا کہ کھانا بناتے ہوئے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عورت کھانا تیار کر رہی ہے اگر وہ اس میں پانی ملانا چاہتی ہے اور وہ اس میں ایک گھونٹ پانی اس لیے ڈال دیتی ہے کہ اگر مہمان آ گئے تو ان کو یہ کھانا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی سالن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، شوربہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ شوربے کی اصل جو ہوتی ہے نا وہ پانی ہی ہوتا ہے، پانی ہی ہوتا ہے رائٹ. تو باقی اس کے اندر مسالے وغیرہ تو گویا کہ ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں شوربہ تو پانی سے بنتا ہے، تو ایکسٹرا پانی ڈال دیا نا. لیکن دل میں نیت یہ کری کہ اگر مہمان آ گئے تو ان کو یہ کھانا پورا ہو جائے گا، تو مہمان نہ بھی آیا تو پکانے والی عورت کو مہمان کا کھانا بنانے کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو مہمان کا کھانا بنانے میں ثواب بھی ملتا ہے. اچھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ والی بات. ٹھیک ہے، مہمان تو بلائے جان ہوتی ہے رائٹ، مہمان تو بلائے جان یعنی جان کی بلا، تو اس کے اوپر ثواب ملنا یہ تو الٹی بات فرما دی. ٹھیک ہے، لیکن بڑوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہی صحیح ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مہمان کا کھانا بنانے پہ ثواب ملتا ہے، और सवाब क्या चीज होती है, सवाब जन्नत की करेंसी को कहते हैं, जिस करेंसी के जरिए यानी जिन नोटों के जरिए से हम चीजें खरीदते हैं ना, तो उसी तरह जन्नत में जाएंगे तो सवाब की करेंसी के जरिए से हम जन्नत के दरजात खरीदेंगे। ठीक है, जिसके पास सवाब होंगे तो वो दरजे खरीदेगा, और जिसके पास सवाब नहीं होंगे तो वो जन्नत की दरजे नहीं खरीद सकेगा, जन्नत की नेमतें नहीं हासिल कर सकेगा। ठीक है, वहां पे बाकायदा कोई कैश काउंटर नहीं बना हुआ होगा कि वहां पे जाके अपना सवाब दे रहे हैं, उसके बदले में जो है वो गाड़ी खरीद रहे हैं जन्नत की और जन्नत की महल खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसका अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से निजाम पहले से करवाया हुआ होगा ना, कि पहले से जो है ना वो सवाब की जो जो अकाउंट होगा वो फरिश्ते उसको गिन लेंगे, और उसके हिसाब से फिर बंदा जो ईमान वाला जन्नत में दाखिल होगा तो उसको वहां पर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो औरत को मेहमान का खाना बनाने का सवाब मिल जाएगा। तो कुकिंग में हमेशा जहन में रखें कि हमने सिर्फ घर घर के चार बंदों के लिए खाना नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा डालकर मेहमान की नियत भी करनी है। नियत मेहमान की करें और मजे खुद उड़ाएं। ठीक है, ये एक जिमनी जुमला बोल दिया एक थोड़ा सा इसके अंदर लाइटर मोड पैदा करने के लिए, कि भाई नियत आप मेहमान की करें, और बेशक मेहमान नहीं भी आ रहा है तो आप जो है वो खूब खूब अच्छे से खुद खाएं और अपने बच्चों का पेट भरें। ठीक है, तो ये नियत क्या चीज होती है, ये नियत जो होती है ना इंसान की सोच को कहते हैं। ठीक है, सोच में नियत होती है ना, नियत जो है वो कोई जुबान से नहीं अदा की जाती, नियत कोई कागज पे नहीं लिखी जाती, नियत कोई किताब के अंदर से पढ़ करके नहीं की जाती, बल्कि नियत क्या होती है, जो इंसान की सोच होती है। ठीक है, तो सोच जो है वो इंसान ऐसी बनाए कि मुझे अल्लाह ताला के सवाब की जरूरत है। ठीक है, मैं मोहताजे सवाब हूँ, तो उसके लिए फिर जो भी नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ तरीका है, बुजुर्गों का समझाया हुआ तरीका है, तो उसके जरिए से अब मैं सवाब हासिल करूं। ठीक है, तो अल्लाह ताला के यहाँ सोच की कदर होती है, सोच की कदर होती है। ठीक है ना, इन्नमल आमालु बिन नियात, आमाल भी जो इंसान करता है ना वो भी इंसान की सोच के बकदर अल्लाह ताला कबूल करते हैं, है ना, वरना अगर सोच खराब होगी तो आमाल तो अच्छे कर रहा है लेकिन फिर भी कबूलियत नहीं है। इन्नमल आमालु बिन नियात का तो यही मतलब है ना, कि भाई आमाल जो आपने किए हैं ना तो वो सोच पर उनकी कबूलियत का दारोमदार है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इंसान की सोच को देखते हैं, जिसको नियत कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेज, इवन अंग्रेज भी जो गैर मुस्लिम भी होता है, अक्सर अंग्रेज तो गैर मुस्लिम होता है ना, वो तो आप कुछ कॉन्वर्ट कन्वर्ट हो गए तो वो मुसलमान, वरना अंग्रेजी जुबान तो गैर मुस्लिमों की जुबान है। इवन उस जुबान के अंदर ही भी बाकायदा मुहावरा है, क्या है, इट्स द थॉट दैट काउंट्स, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। ठीक है, ये सोच होती है जो कि काउंट करती है, और हम एक दूसरे को भी बोलते हैं कि भाई तुमने मेरे बारे में सोचा, ये मेरे लिए अहम है कि तुमने कम से कम मेरे लिए सोचा तो सही ना, बेशक तुम कुछ कर ना सके मेरे लिए लेकिन तुमने मेरे लिए सोचा तो सही ना। क्या ख्याल है कि हम एक दूसरे को ये कहते हैं और हमारे दिल में ये कैफियत होती है, तो क्या अल्लाह ताला डिजर्व नहीं करते ये चीज कि हम अल्लाह के बारे में सोचें, हम अल्लाह के लिए सोचें, हम अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के लिए सोचें। ठीक है, एक दूसरे के लिए तो सोचना बड़ी अहम चीज समझते हैं और दूसरों से तवक्को भी करते हैं कि हमारे लिए सोचें। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए सोचना जो है ना वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। तो अब हम अपने गरेबान में झांक के देखें कि हम क्या हैं, क्या हम अल्लाह के बंदे हैं, राइट, या किसी और के बंदे हैं, यानी किसी और के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर तो हकीकत में तो हम उसके बंदे हुए ना। ठीक है, और अगर अल्लाह के बारे में सोचते हैं, अल्लाह की रजा के लिए सोचते हैं, तो फिर हम अल्लाह के बंदे हुए। ठीक है, तो ये तो अभी हमारे सोचने का वक्त है, वरना जब हम कब्र में डाले जा रहे होंगे तो उस वक्त तो फिर यही सोच रहे होंगे कि कब्र में तो ये जिन लोगों के बारे में मैंने सारी जिंदगी सोचा, कब्र में तो ये मेरे साथ नहीं होंगे, राइट, मेरी कब्र में तो ये मेरे साथ नहीं होंगे, मेरी कब्र में तो अगर कोई मेरे साथ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह होगा। ठीक है, आवाज कट रही, कम आ रही है, कट रही है, बाकियों को भी ये प्रॉब्लम है तो फिर बताएं, वरना इनके एंड पे प्रॉब्लम होगी फिर, अगर मेरी आवाज बाकियों को सही से आ रही है तो। जी मेरी साइड पे प्रॉब्लम है? जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप जरा अपना स्पीकर वगैरह चेक कर लें, अपना इंटरनेट के करीब हो जाएं राउटर वगैरह के, तो आपकी तरफ ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला कब्र में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही होगा ना, और तो कोई हमारे साथ नहीं होगा। तो वहां अगर अल्लाह ने हमें छोड़ दिया कि भाई तुमने आमाल तो चलो कर लिए, लेकिन सोचा तो तुमने मेरे बारे में नहीं, ठीक है, सोच तो तुम्हारी किसी और तरफ रहती थी, किसी बंदे की तरफ रहती थी, किसी चीज की तरफ रहती थी, ठीक है, मेरे बारे में तो तुम्हारी सोच थी ही नहीं। तो अब जो है वो मेरे करोड़ों बंदे कब्रों के अंदर अकेले पड़े हुए हैं, राइट, मेरे करोड़ों बल्कि अरबों बंदे अपनी अपनी कब्र में, हर बंदा अकेला पड़ा हुआ है जिसके साथ और कोई भी नहीं है। तो इस वक्त मैं अपने उस बंदे की मदद को क्यों ना जाऊं जो मुझे सोचता था, जो मेरे बारे में सोचता था, मैं उस बंदे की तरफ क्यों जाऊं जिसको मैंने ये इल्म पहुंचा भी दिया था कि देखो तुम मेरे बारे में सोचा करो, उस तक मैंने ये इल्म पहुंचा भी दिया था अपने नबियों के जरिए से, नबियों के वो रसा के जरिए से, लेकिन उसने इस इल्म के ऊपर कान ही नहीं धरे, कान नहीं धरे इस इल्म के ऊपर, बल्कि लगा रहा वो मखलूक की तरफ सोचने सोचने में लगा रहा, सारी जिंदगी जो है वो मादी अशिया की तरफ सोचने में लगा रहा, सारी जिंदगी वो मरने वाले इंसानों की तरफ, ढलने वाली चीजों की तरफ सोचने में लगा रहा, और मेरी तरफ उसने कभी तवज्जो ही नहीं करी। तो अब मैं उसकी मदद को क्यों जाऊं, उसकी कब्र में उसको सहारा देने के लिए, उसको जो है वो कंपनी देने के लिए मैं क्यों इंतजाम करूं? ठीक है, तो भाई सारी जिंदगी हम अल्लाह ताला के साथ ये सौतेला बर्ताव करते हैं, सारी जिंदगी अल्लाह के साथ सौतेला, सौतेला का मतलब समझाया था ना जुमे के दिन, क्या था आप में से कोई बताएगा सौतेले का मतलब क्या होता है? जी क्या मतलब सौतेला? खाने बनाने की टिप्स हो गई ना, बस खत्म हो गई, अब तो आएंगे अपने मकसद की तरफ। ठीक है, मकसद हमारा तो ये नहीं है बैठ के आपको खाना बनाना सिखाएं और फ्राई पैन को गरम करना सिखाएं, ठीक है ना, वो तो एक बहाना था जो हजरत जी ने इख्तियार किया था असल बात करने के लिए ना, तो असल बात तो यही है। तो सौतेले का मतलब क्या बताया था, क्या होता है जी सौतेला? सौतेली अम्मी किसी को नहीं मिली, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना सौतेले का मतलब क्या होता है। जो बायोलॉजिकल नहीं है। सही बात है, बायोलॉजी आपने ज्यादा पढ़ी है माशाल्लाह। हाँ, जो अपना नहीं है, ठीक है, जो सगा नहीं है, उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको बायोलॉजिकल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो सौतेला वो होता है जो अपना नहीं होता, जो सगा नहीं होता, बल्कि किसी और का होता है, लेकिन अब मेरे ऊपर जो है ना वो मुसल्लत हो गया है, मेरे ऊपर मुसल्लत हो गया है, उसको सौतेला कहते हैं, ठीक है ना। उर्दू मुहावरे में भी सौतेला का लफ्ज इसी माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, मुहावरे में, सही है कि तुमने इसको सौतेला समझ रखा है। तो अल्लाह ताला का भी मामला क्या हमारे साथ सौतेला है, कि अल्लाह हमारा नहीं है, बल्कि वो तो पीर साहब का अल्लाह है, वो तो शेख साहब का अल्लाह है, वो तो हजरत का अल्लाह है, या जो नसीहत करने वाले लोग हैं वो तो उनका अल्लाह है, हमारे ऊपर खामखान को अल्लाह को मुसल्लत किया जा रहा है, हमारे ऊपर अल्लाह को खामखा मुसल्लत किया जा रहा है, तो ये तो सौतेला ही इसको कहते हैं ना। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला के साथ सौतेला सलूक करते हैं कि हम अल्लाह ताला को अपना नहीं समझते, ठीक है, और अल्लाह ताला के बारे में हम वैसे सोच और फिक्र ही नहीं रखते जैसा कि हमें समझाई जा रही होती है, लेकिन हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर नऊज बिल्ला अल्लाह की सोच को, अल्लाह की फिक्र को, अल्लाह के लिए जीने को मुसल्लत किया जा रहा है, हम क्यों करें भाई? जब अल्लाह शेख साहब का अल्लाह है, नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह है, पीर साहब का अल्लाह है, तो हमारे ऊपर क्यों उसको मुसल्लत किया जा रहा है? तो इस वजह से हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, बल्कि इसको जो है ना वो हटाते रहते हैं अपने से दूर। ठीक है, तो सोच की कदर, अल्लाह ताला के यहाँ सोच की कदर है। ठीक है, और फिर सोच के बाद जितना अमल इंसान के लिए मुमकिन होता है वो करता है। ठीक है ना, अमल का तो मसला नहीं है, मसला असल में सोच का है ना। तो मेहमान की सोच किस लिए? अल्लाह के लिए। ठीक है, अब बाकी उसका आना या ना आना ये तो अल्लाह का फैसला है कि भाई मेहमान आएगा या नहीं आएगा। तो मेहमान का नाम सुन करके हमें नाक भौं नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वो हो सकते हैं कि भाई अच्छा मैं उनको क्या खिलाऊंगी, कैसे उनको जो है वो, तो उसके लिए मुसीबत पैदा ना करें अपने ऊपर। ठीक है, ये भी काफिर का, ये भी शैतान की एक मेहनत होती है कि मेहमान के लिए जो है ना वो, यानी शैतान जो है वो मेहमान को बलाए जान बनाता है इस तरीके से कि हमें अपनी नाक की फिक्र हो जाती है हर वक्त कि मेहमान के सामने ये सब कुछ ना किया तो हमारी नाक कट जाएगी। ठीक है, हमारी नाक कट जाएगी। तो भाई अब आपके अब बस में नहीं है, अगर बहुत कुछ करना मेहमान के लिए तो जो है दिल की खुशी के साथ वो करें, तीबे नफ्स के साथ वो रखें उसके सामने, जो मुयस्सर है वो रख दें उसके सामने। ठीक है ना, इसको मुसीबत ना बनाएं कि तर्जा लेकर के जो है ना वो मेहमान के सामने पेश कर रहे हैं। रिवायात के असीर, इसको कहते हैं रिवायात के असीर होना, रिवायात के गुलाम होना। ठीक है कि जी हमारी रिवायत ये है, हमारी रिवायत ये है, भाई जो है वो आप इसके सामने रखें और खुशी के साथ रखें। ठीक है, बजाय इसके के अपने ऊपर भी जो है वो उसको मुसीबत बनाएं, और जो घर के दूसरे अफराद हैं उनके लिए मुसीबत बनाएं इसको। शैतान के लिए रास्ता हमवार नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, तो शैतान को हम खुद ही जो है वो चांस देते हैं कि वो फिर लोगों के दिलों को खराब करे कि भाई ये तो क्या मुसीबत है, ये तो मेहमान आ गया है, वो क्या मुसीबत हो गई है। ठीक है, अब आपने ये क्लास सुनी, अल्लाह करे आपको समझ में आई हो, आपके घर के दूसरे वालों ने अगर नहीं सुनी, दूसरे घर वालों ने अगर नहीं सुनी ये वाली क्लास, तो उनको तो ये बात नहीं पता, तो अब तो वो यही देखेंगे ना कि यार ये तो इनको अच्छा जो है वो पता नहीं कौन सा लेक्चर सुनने को मिल गया है, तो अब इन्होंने जो है ना वो मेहमान को जो है वो एक मुसीबत बना दिया है हमारे लिए। ठीक है ना, तो फिर अब घर के दूसरे शख्स जो है वो, दूसरे अफराद जो है वो उनके ईमान का के लिए मुसीबत बन जाएगी। लेक्चर क्या सुन लिया हमारे घर की इस खातून ने, अब जो है वो सबके लिए मुसीबत। तो ऐसा ना करें। ठीक है, जब मेहमान की अच्छी खातिर नहीं करते तो अपने आप में बुरा लगता है, तो क्या ये नफ्स के लिए हो रही है कि क्यों बुरा लगता है? भाई जो है वो आप रखें उसके सामने ना। ठीक है, मेहमान क्या सोचेगा ये नहीं सोचे ना आप अल्लाह ताला के बारे में सोचते क्यों नहीं? यही तो मुसीबत, यही तो सारी की सारी बात हो रही है। कब्र में मेहमान आएगा आपके साथ राहत पहुंचाने के लिए, राइट? मेहमान को तो खुदा नहीं बनाए ना, मसला यही है। हमसे अल्लाह के लिए नेकी नहीं होती, हम नेकी करते भी हैं ना तो इंसानों के लिए करते हैं, तो हमने तो इंसानों को खुदा बना लिया ना। ठीक है, तो हम अल्लाह के लिए करें ना, जो करना है वो अल्लाह के लिए करें, और जो नहीं अल्लाह के लिए कर सकते ना तो उसको फिर या तो ना करें, या तो ना करें, या अगर करें तो भी इस नीयत के साथ करें कि अभी मेरी नीयत अल्लाह की खातिर कामिल नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी नीयत अल्लाह के लिए कामिल हो जाए। ठीक है, ये भी एक एक सिचुएशन है कि आप अल्लाह के लिए काम नहीं कर रही लेकिन आप चाहती हैं कि आपका काम अल्लाह के लिए हो जाए, तो इस नीयत से काम करना ये भी अल्लाह के लिए काम करना बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह ना करें कि बस मेहमान ही के लिए कर रहे हैं, इंसान ही के लिए कर रहे हैं, अल्लाह का कोई तसव्वुर ही नहीं है बीच में। ये तो शिर्क है यार, ये तो शिर्क है, मानते ही नहीं हम इस बात को शिर्क। ये तो शिर्क है कि अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो मैं वो इंसानों को जो है वो मुकाम दे दिया जो अल्लाह का ड्यू मकाम था। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम है। लेकिन हमने उसको मुश्किल बना दिया है, हमने इंसानों को खुदा बना लिया है, और जो एक खुदा था उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो कितने इंसान है दुनिया में, आपके जानने वाले कितने इंसान होते हैं? हजारों तो होंगे ना कम से कम, और मिलने वाले जो है वो कई सौ में होंगे। तो इतने 100 खुदाओं को खुश करना ये ज्यादा मुश्किल काम है, या एक अल्लाह को खुश करना ज्यादा मुश्किल काम है? तो अब हम इंसानों को खुश करने के पीछे लगे रहते हैं, तो ये हम अपनी जिंदगी को दुनिया में ही जहन्नुम बना लेते हैं। दुनिया में ही हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, और फिर मरने के बाद भी जहन्नुम हमारा इंतजार कर रही होगी। मरने के बाद भी फिर जहन्नुम ही इंतजार करेगी हमारा, हमारे लिए तैयार की जा रही होगी। ठीक है, जिसने एक अल्लाह को छोड़ करके यानी किस किस चीज को खुदा बना लिया, तो उसको फिर जन्नत तो नहीं उसका इस्तकबाल करेगी ना। अच्छा, आगे हजरत ने फरमाया, इसका उनवान लिखा गया कि जहन्नुम की आग की याद दहानी। तो एक और बात जहन में रखें कि खाना तैयार करते हुए औरतों को आग से वास्ता पड़ता है, तो कोशिश करें कि जहन्नुम की आग को भी याद रखें, कि अगर दुनिया की आग गोश्त को जला देती है, इस तरह चीजों को बॉयल कर देती है, और चीजों को इस तरह भून देती है, तो कयामत के दिन जहन्नुम की आग हमारे जिस्मों को किस तरह से भूनेगी। ठीक है, तो आखिरत की तरफ ध्यान रखना, अल्लाह की तरफ ध्यान की बात हो गई ना, अब क्या है आखिरत, और आखिरत कौन सी जगह है जहां पे अल्लाह से मुलाकात होगी। तो आखिरत भी अल्लाह ही के लिए है, ये नहीं है कि अल्लाह कोई अलग है फिर आखिरत कोई अलग है, तो हमें दो दो चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत, हमें दो दो चीजों के बारे में ध्यान की डिमांड की जा रही है हमसे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको दो की तरफ मुतवज्जे नहीं किया जा रहा, आपको एक ही तरफ, हमें हम सबको एक ही की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है, और वो है अल्लाह। ठीक है, तो आखिरत भी अल्लाह ही के लिए है। सही, तो अब वहां पर जहन्नुम से एक तो बॉईल करना और भून देना और जला देना, लेकिन इन सब का लुब्बे लुबाब क्या है कि जहन्नुम में अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी, जहन्नुम में अल्लाह का दीदार नहीं होगा। ठीक है, बल्कि जहन्नुम में जाने से पहले ही ये जो काफिर होंगे ये अल्लाह का दीदार करना चाहेंगे, क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे होंगे तो ये काफिर भी करना चाहेंगे। ठीक है, इनके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत का बीज तो है ना, लेकिन मैदान हशर में ही इनको अल्लाह के दीदार से रोक दिया जाएगा। वो जो वही आयत, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यकसिबून, कल्ला अन रब्बिहिम यौम इज़िल लमहजूबून। वो हिजाब में होंगे काफिर कयामत के दिन अल्लाह ताला से। ठीक है, तो जहन्नुम की भी असल सजा जो है ना, वो ये भुनना और जलना और ये बॉयल करना नहीं है, असल सजा अल्लाह से महरूमी है, अल्लाह से महरूमी है। ठीक है, और जो अल्लाह से महरूम तो उसके नसीब में जलने भुनने और बॉयल होने के अलावा और कुछ है ही नहीं। जो अल्लाह से महरूम है उसके नसीब में, ये लिख लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, आपने लिखा ना, इसको नोट कीजिए, जो अल्लाह से महरूम है उसके नसीब में जलने और भुनने और बॉयल होने के सिवा और कुछ नहीं है। तो वो दुनिया में भी जलता भुनता और बॉयल होता रहता है, अंग्रेजी में उसको बॉयल होना कहते हैं, अंग्रेजी में जो है ना वो ही इज बर्निंग नहीं कहते हैं, और शी इज फ्राइंग नहीं कहते हैं, बल्कि शी इज बॉयलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो बॉयल होना ही अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन इट इज डिस्क्राइबिंग द सेम फीलिंग, द सेम फीलिंग, राइट? तो दुनिया में क्यों भुन रहे हैं भाई, क्यों जल रहे हैं, क्यों भुन रहे हैं, क्यों बॉयल हो रहे हैं? एक अल्लाह से ताल्लुक बनाए नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं अल्लाह से ताल्लुक बनाने का, राइट? तो अल्लाह से ताल्लुक बनाए, दुनिया आपकी जन्नत बन जाएगी, अल्लाह दुनिया में जन्नत अता फरमाएंगे, हयातन तय्यबा, हयातन तय्यबा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा किया है इस हयातन तय्यबा का। ठीक है, तो वो अल्लाह से जुड़े बगैर नहीं मिल सकती है। हयातन गलीजा जो है वो दुनिया में भी लेके बैठे हुए होते हैं अल्लाह को छोड़ करके, और मरने के बाद भी फिर वो हयातन गलीजा ही लेकर के आगे जा रहे होते हैं। तो अगला उनवान, जिक्र के साथ खाना बनाना। फरमाते हैं खाना बनाते हुए एक बात का बहुत ख्याल रखें कि उस दौरान आप या तो कलमा पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें। सहाबियात खाना बनाते वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। चुनाचे एक वाकया है कि एक सहाबिया ने तनूर पर रोटियां लगवाई और जब उठने लगी तो कहने लगी, ले बहन मेरी तो रोटियां भी पक गई और मेरे तीन पारे भी मुकम्मल हो गए। तो रोटी लगाने के दौरान गोया वो तीन तीन पारे तिलावत कर लिया करती थी। ठीक है, तो तीन तीन पारे जो है ना वो, अब वो मतलब यहाँ पर ये उर्दू में तर्जुमा है ये, ठीक है, पारे उस जमाने में पारे होते नहीं थे, ठीक है, तो अब इसको आप तीन मंजिल समझ लें, या हो सकता है अरबी जुबान में, मैंने ये हदीस देखी नहीं है, जिन्होंने अगर देखी है तो वो बता सकते हैं कि अरबी का लफ्ज क्या था। ठीक है, तो पारे का लफ्ज तो उर्दू के ट्रांसलेशन के अंदर लिख दिया, तो कोई है ना कहीं जी पारे तो होते ही नहीं थे उस जमाने में, तो साहबिया ने तीन पारे कैसे तलावत कर लिए। ठीक है, लेकिन मकसद जो है ना वो उसको समझें कि नहीं, जिक्र नहीं, कुरान मजीद की तिलावत की खात में आप बात कर रहे हैं। तो कुरान मजीद का कितना बड़ा, एक बड़ा पोर्शन जो है वो पढ़ लेती थी, इतनी तिलावत किया करती थी, और खाना पकाने के दौरान भी तिलावत करती थी। तो आप कुकिंग के दौरान जिक्र करेंगी, फिर ये खाना घर के लोगों के पेट में जाएगा और उनके दिलों में नूर आने का सबब बनेगा, आपकी औलाद खुद ब खुद नेक बनेगी। ठीक है, तो ये हालत जिक्र, ये कुरान मजीद के जरिए से कुरान मजीद की तिलावत, ये जिक्र का एक तरीका है। ठीक है, और इसके अलावा कलमा तैयबा का जिक्र, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, याद नबी अलैहिस्सलाम दुरूद शरीफ, उसमें भी अल्लाह का जिक्र ही है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मद व अला आले सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, तो उसमें अल्लाह और रसूल दोनों का जिक्र है दुरूद शरीफ के अंदर। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ये यानी हालत जिक्र में। और इसके लिए एक और भी बहुत बुनियादी बात ये कि हालत वजू में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर वाले भी और जो अल्लाह वालों के वाकयात हैं उन सब के अंदर कि जी वजू के अंदर खाना बनाना, ठीक है, वजू की हालत में खाना बनाना। तो वजू से जो है ना वो जो शरई वजू होता है ना उससे इंसान गोया के एक डिफॉल्ट हालत जिक्र में आ जाता है। ठीक है, वुजू में आ जाना जो है ना ये ऐसा है जैसे कि आप अपने फोन पे काम कर रही हैं ना, फोन पे, ठीक है, या लैपटॉप पे काम कर रही हैं, तो अब इसके ऊपर कोई ऐप चल रही है या अगर नहीं भी चल रही लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐप तो चल ही रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना जैसे लैपटॉप और पीसी के अंदर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह फोन्स के ऊपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आईफोन का जो है वो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस कहते हैं उसको, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पीछे चल ही रहा है ना, ऊपर बेशक कुछ ना हो रहा हो। ठीक है, वुजू की हालत का यही मामला है, ऊपर से अगर आप कुछ नहीं भी कर रही ना तो आप हालत जिक्र में आ गई हैं हालत वुजू की वजह से। ठीक है, हत्ता के मशायख तो इवन उजुर के दिनों में भी वुजू करने को कहते हैं, इवन उजर के दिनों में जब आप तिलावत कर भी नहीं सकते और नमाज पढ़ भी नहीं सकते उस वक्त भी। किस लिए? क्योंकि वुजू के जो अफआल हैं ये जाहिरी अफआल है ना ये, ठीक है, ये कोई थोड़ी है कि आप वुजू के अंदर जो है वो कोई दिल के अंदर जो है वो कोई मुराकबा कर रही होती हैं, फैज को जो है वो दिल में दाखिल कर रही होती हैं, नहीं, आप तो सिर्फ वुजू करने में हम जाहिरी अफआल कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो जो उजर के हालात होते हैं वो तो एक बातनी मामला चल रहा है ना, लेकिन आपने एक जाहिरी गोया के वुजू करके एक जाहिरी लेप बिठा दी उसके ऊपर, एक जाहिरी कवरिंग बिठा दी पाकीजगी की। ठीक है, तो उससे उजुर खत्म नहीं हो जाता, वो खत्म नहीं हो क्योंकि वो एक बातनी चीज है। ठीक है, लेकिन एक पाकीजा जाहिर जो है ना वो गोया के उसके ऊपर कवर बना देता है। तो आगे फरमाते हैं कि बाज औरतें औलाद की नाफरमानी के शिकवे तो करती हैं मगर इस बात को भूल जाती हैं कि हमने खाना बनाते हुए कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया। ठीक है, अब देखें खाना बनाते हुए अल्लाह को याद नहीं किया तो फिर किसको याद किया? इंसान का दिल जो है ना वो याद से कभी भी खाली नहीं होता, कभी भी याद से खाली नहीं होता। तो तो अगर अल्लाह को याद नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो गैर अल्लाह को याद कर रहा है, ठीक है? अल्लाह को याद नहीं कर रहा तो वो गैर अल्लाह को याद कर रहा है। तो गैर अल्लाह की याद से मुराद यहां पर बुराई, गुनाह, ठीक है ना? और अल्लाह की याद से मुराद अल्लाह और अल्लाह के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज, अल्लाह की निस्बत से किसी चीज को याद कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह की याद में आता है। और गैरुल्लाह की याद में क्या चीजें आती हैं जो कि अल्लाह के दीन के खिलाफ जो चीजें होती हैं ना, उनका ध्यान रखना ये गैरुल्लाह का जिक्र कहलाता है, ठीक है? तो यहां पर हजरत की मुराद क्या है, ये जो फरमाया ना कि हमने खाना बनाते हुए कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, गैरुल्लाह को याद किया, ठीक है? तो फिर ये जो हालत है इससे जो है ना वो खाने के अंदर जुल्मत दाखिल हो जाती है, ठीक है? तो बगैर जिक्र के खाना बनेगा तो वो जुल्मत पैदा करेगा, और जिक्र के साथ खाना बनेगा तो वो दिल में नूर पैदा करेगा, ठीक है? तो अब इसके अंदर ये मैं कुछ, एक मिनट ठहर जाए जरा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ना गुनाह का सोचना, ठीक है? तो गुनाह की तरफ सोचते रहेंगे खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, तो जुल्मत जो आपके अंदर आ रही है ना वो आपके बनाए हुए खाने में भी आएगी, ठीक है? अब जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा आते हैं, दरस कुरान में एक बात हुई थी, ठीक है, उसकी तरफ भी आते हैं कि एक तो गुनाह की तरफ सोचना, हम दीनदार लोग माशाल्लाह क्लास के अंदर सारे मौजूद हैं तो वो गुनाह को जानते हैं कि कोई बेहयाई की बात को सोचना या म्यूजिक को सुनना, ठीक है, ये गुनाह की तरफ सोचना होगा, ठीक है? लेकिन एक और भी तो गुनाह है, ठीक है, जो कि इन सबसे बड़ा गुनाह है एक्चुअली, ठीक है? म्यूजिक सुनने से और बेहयाई की चीज देखने से और बेहयाई की बात करने से और जो है वो गीबत करने से और झूठ बोलने से भी बड़ा और बहुत ही बुनियादी लेवल का गुनाह है, ठीक है? यानी वो गुनाहों की बुनियाद है, समझ लें, ठीक है? वो कौन सा गुनाह है जो गुनाहों की बुनियाद है, वो कौन सा गुनाह है? गुनाहों की बुनियाद कौन सा गुनाह है? सोच का गुनाह। कौन सा वाला सोच का गुनाह? सोच के तो बहुत सारे गुनाह होते हैं ना, तो सोच का कौन सा वाला गुनाह? पता नहीं क्या, दुनिया की मोहब्बत। हाँ, दुनिया की मोहब्बत, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतियतिन, ठीक है? तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट जो है ना वो बुनियाद से भी कर दिया जाता है, ठीक है? लेकिन यहां पर हम समझ लें कि इस बुनियाद की भी बुनियाद की बात कर रहे हैं, बुनियाद की भी बुनियाद, हुब्बुद दुनिया जो है ना, ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया उस हदीस के मुताबिक, तो हम आपके जवाब को गलत नहीं कह सकते कि वो गुनाहों की बुनियाद है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, ठीक है? लेकिन एक होता है बुनियाद की भी बुनियाद, जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते हैं, कभी देखा यहाँ पे जो जो इधर रहते हैं ना, तो वो तो अक्सर बिल्डिंग बनते हुए देख भी रहे होते होंगे, गड्ढा खोलते खोदते हैं, गड्ढे के अंदर जो है बुनियाद बनाते हैं, लेकिन बुनियाद के नीचे भी एक जो है ना वो पहले बुनियाद बनाते हैं, उसको प्लिंथ भी कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है? तो वो क्या है, बुनियाद की भी बुनियाद, खैर अल्लाह की सोच, ये भी बुनियाद की बुनियाद नहीं है, ठीक है? बल्कि बुनियाद की भी बुनियाद क्या है, जो कि असल बुनियाद, असल बुनियाद क्या है, ठीक है? ये वो वाली बुनियाद की बात ये आज इस बात कर रहा है जो कि शैतान जिसके ऊपर मेहनत करता है, जिसके लिए मेहनत करता है, ठीक है? अब ये आपको एक बहुत बड़ा सा हिंट दे दिया है, अब तो जवाब देना आसान होगा। ये वो वाली बुनियाद है कि जिसके ऊपर शैतान मेहनत करता है, बुनियाद बनाने की मेहनत करता है जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ, ठीक है? नाशुक्री, नाशुक्री, ठीक है, ये वो बुनियाद है कि जिसके ऊपर शैतान मेहनत करता है। ये शैतान जो है ना, वो इतना बड़ा आरिफ है, इतना बड़ा आलिम है, ठीक है, कि जिसका कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सिवाय जिसके ऊपर अल्लाह ने खास फजल फरमाया हो ना, बाकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता इसके इल्म का और इसके इरफान का। तो ये अच्छी तरीके से बात को समझता है कि मैंने सिर्फ जमीन तैयार करनी है, बाकी सारा काम जो है ना वो फिर, जैसे आप हल चलाएं तो हल चलाने से क्या होता है, जमीन तैयार हो जाती है, ठीक है। अब उसके ऊपर कोई बीज ना भी डाले ना, कोई उड़ता हुआ परिंदा गुजरेगा और उसके पैरों के साथ जो है ना वो बीज फंसा हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, वो परिंदा जब जमीन में उतरेगा ना, तो उसके पैर से वो बीज जो है वो जमीन में जाएगा और उसमें पौधा निकल आएगा, दरख्त उगाएगा, ठीक है ना। किसी किसी इंसान ने बीज डाला ही नहीं, किसी जिन ने आके बीज नहीं डाला, परिंदा उड़ता हुआ वही बीज डाल के चला गया ला इल्मी में, लेकिन फिर भी पौधा उग जाएगा। क्यों? इसलिए कि जमीन तैयार है, हमवार है, ठीक है। तो अगर जमीन हमवार कर दी गई तो फिर गुनाहों के हर बीज दानिस्तगी से डाले गए हों या ना दानिस्तगी में डाले गए हों, हर बीज फिर पौधे में कन्वर्ट होगा, गुनाहों के पौधे में। ये है नाशुक्री का गुनाह, ठीक है ना। तो जब ही शैतान ने अल्लाह ताला के साथ जो कॉन्वर्सेशन करी थी ना, जिसमें अल्लाह ताला ने पूछा था क्यों नहीं तूने सजदा किया, तो इसने आगे से हुज्जतें दी थी ना, खलकनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, इसी वजह से मैंने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने कहा निकल जाए इधर से, तू रजीम है, राइट। तो आगे से इसने क्या कहा था कि मैं ना इस बनी आदम, इस आदम को और उसके औलाद को जो है ना वो बहकाऊंगा, दाहिनी तरफ से भी, बाएं तरफ से भी, आगे से भी, पीछे से भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरी। और इसने कहा, क्या कहा, कि मैं जो इन लोगों को बहकाऊंगा ना, तो इनके यानी मेरी इस मेहनत का नतीजा क्या निकलेगा, आप इनमें से शुक्र करने वालों को नहीं पाएंगे, अक्सर लोगों को शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे। क्या मतलब हुआ? सीधा साधा, कोई इसमें टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, सीधा सारा मतलब कि उसकी सारी मेहनत क्या थी, नाशुक्री करवाने के ऊपर, ठीक है। बाकी चीजें नाशुक्री का रिजल्ट बनती हैं, अल्लाह से गफलत ये नाशुक्री का रिजल्ट बनती है। क्यों? अल्लाह से जो गाफिल होना है ये नाशुक्री का रिजल्ट क्यों बनती है? या आप चले, आप जवाब अगर मेरा समझ में नहीं आया होगा तो इस सवाल से जवाब समझ में आ जाएगा, ये नाशुक्री असल गुनाह क्यों है। अल्लाह से गफलत या दुनिया से मोहब्बत, ये नाशुक्री का सबब क्यों बनती है? सॉरी, ये नाशुक्री से जनरेट कैसे होती है, क्यों? अल्लाह से गफलत जो पैदा होती है ना इंसान में, तो वो नाशुक्री का नतीजा कैसे कैसे बनती है? ये दुनिया की मोहब्बत है, तमाम गुनाहों की जड़ है, ठीक है। अल्लाह से गफलत ये गुनाहों की जड़ है, लेकिन इसकी जड़ क्या है? नाशुक्री। वो कैसे? तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, जब हम नाशुक्री करेंगे तो जो है वो भी अल्लाह हमसे दे देगा। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। शुक्र अदा करेंगे तो ध्यान मुनअम की तरफ जाएगा ही, दूसरों को देखो के देख के हिर्स करना। देखें, अल्लाह ताला ने वक्त, असल में क्लास का ऑफिशियली तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो 1 घंटे का टाइम चलता है वो पूरा नहीं हुआ। नाशुक्री की वजह से इंसान ईमान से खारिज हो सकता है। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, नेमत दी है कि जिसका सही इस्तेमाल करके वो अल्लाह ताला को याद करता है, ठीक है। जब वो उस नेमत का सही इस्तेमाल करता है ना, तो उस नेमत के अंदर अल्लाह ताला की याद मौजूद है। वो क्या है? इंसान का दिल, इंसान की रूह भी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि दिल जो है वो रूह का ही हिस्सा है, कल्ब रूह का ही हिस्सा है ना। रूह का जो सदर मकाम है, कैपिटल है, वो इंसान का कल्ब है, ठीक है। या आप उसको फितरत भी कह सकते हैं, फितरत, ठीक है। तो ये जो रूह है ना इंसान की, या ये जो कल्ब है ना इंसान का, या ये जो फितरत है ना इंसान की, इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को रखा है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को रखा है, चाहे कोई मुसलमान घराने में पैदा हो, चाहे कोई काफिर घराने में पैदा हो, लेकिन फितरत में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, अपने ध्यान, क्योंकि मोहब्बत से ऑटोमेटिकली ध्यान उसी तरफ जाता है जिस तरफ मोहब्बत होती है, उस तरफ ध्यान, इसी को तो कहते हैं, राइट। तो इस दिल की नेमत का जब इंसान शुक्र अदा नहीं करता, यानी इसका जो असल फंक्शन अल्लाह ताला ने बनाया था, उस फंक्शन की बजाय उसको किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करता है, तो यही उसकी नाशुक्री होती है। इसी को नाशुक्री कहते हैं। लहुम कुलूबुई ला याकिलूना बिहा वलहुम आजानुई ला यस्मऊना बिहा। हमने तो इनको कुलूब दिए थे जिनके अंदर ये सलाहियत थी कि वो अल्लाह का ध्यान करते, वो अल्लाह की तरफ सोचते, लेकिन ला याकिलूना बिहा, इन्होंने उसको सोचने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्या मतलब? क्या बिल्कुल भी नहीं सोचने के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, इन्होंने उसको मादियत के लिए सोचने के लिए इस्तेमाल किया, पैसे कमाने के लिए, या दूसरों के ऊपर काबू करने के लिए और दूसरों को अजियत पहुंचाने के लिए, तो इन्होंने अपने दिल की सोच को इस्तेमाल किया, लेकिन जिस काम के लिए हमने इनको दिल दिया था उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, राइट। तो चीज को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करना जिस मकसद से अल्लाह ने दी है, ये शुक्र करना कहलाता है, ये शुक्र करना कहलाता है। जब इंसान उसको उस काम में इस्तेमाल नहीं करता जिसके लिए अल्लाह ने उसको वो नेमत दी है, तो ये नाशुक्री होती है। अब इसके नतीजे में क्या होगा? उसका दिल अल्लाह से गाफिल हो जाएगा, राइट। अल्लाह से गाफिल हो जाएगा क्योंकि उसने अल्लाह की तरफ ध्यान किया ही नहीं, तो अल्लाह से गाफिल हो गया, ठीक है। दुनिया की तरफ माइल हो गया, अल्लाह की तरफ माइल नहीं किया, तो भाई ऑटोमेटिकली दुनिया की तरफ माइल हो गया, ठीक है। तो जब दुनिया की तरफ माइल हो गया, तो अब जो है वो उसने दुनिया की मोहब्बत के लिए सारे काम करने हैं ना, ठीक है। तो हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ल खतियतिन, ठीक है। लेकिन बुनियाद कहाँ से उठी? नाशुक्री से, नेमत के गलत इस्तेमाल से, ठीक है। तो ये बात पक्की ठक्की है, कुरान मजीद से अल्लाह ताला ने खुद जो है वो उसको साबित कर दिया है कि हमारी असल हालत नेमतों वाली हालत है, राइट। बाय डिफॉल्ट इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, हमें बाय डिफॉल्ट नेमतों के साथ पैदा किया गया है, ठीक है ना। बहुत सारी नेमतें हैं, व इन तउद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। तो हमारा काम दुनिया में आके सिर्फ एक है, वो क्या है? अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करना, ठीक है। अकल की नेमत का सही इस्तेमाल करना, दिल की नेमत का सही इस्तेमाल करना, हाथ पैर की नेमत का, जुबान की नेमत का, कान की नेमत का, नाक की नेमत का, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो खानदान की नेमत का, औलाद की नेमत का, माँ बाप की नेमत का, घर बार की नेमत का, सवारी की नेमत का, इनका सही इस्तेमाल करना, यानी जो इस्तेमाल किसने बताया? अल्लाह ने अपने नबियों के वास्ते से बताया, ये सही इस्तेमाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला तुमसे नेमत को छीन के क्या करेगा? अल्लाह ताला के पास कोई नेमतों की कमी है कि पहले तुम्हें दी थी, अब जो है ना वो दूसरा बंदा पैदा हो रहा है दुनिया में, तो अब उसको कहाँ से नेमत दें? तो तुमसे छीन लेंगे, उसको दे देंगे, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह के पास नेमतों की कमी थी? क्या ख्याल है? अल्लाह के पास नेमतों की कमी है कि वो हमसे छीनता रहता है, पहले देता भी है फिर छीन भी लेता है? नहीं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बता रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा तुमसे नेमतें वापस लेकर के, क्योंकि अजाब का मतलब क्या होता है? नेमतों का छिन जाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अजाब, नेमतों का छिन जाना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, मुझे क्या मिलेगा तुमसे नेमतें वापस ले करके, क्या रीजन बताई, क्या रीजन बताई? अगर तुम शुक्र करोगे, राइट, अगर तुम शुक्र करते और तुम ईमान लाते, तो अल्लाह ताला को क्या मिलता तुमसे नेमतें वापस लेके? तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला चाहते हैं हम शुक्र करें। शुक्र को पहले जिक्र किया, ईमान को बाद में जिक्र किया। शुक्र का जिक्र पहले किया, ईमान का जिक्र बाद में किया, क्यों? ये कोई बताएगा? शुक्र का जिक्र पहले क्यों किया और ईमान का जिक्र बाद में क्यों किया? मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। शुक्र का जिक्र पहले क्यों किया और ईमान का जिक्र बाद में क्यों किया? बहुत कॉमन सेंस की बात है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको मुफस्सिर कुरान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 5 मिनट का लेक्चर ही काफी है आपको इसका जवाब देने के लिए। क्योंकि काफिर भी शुक्र करेगा तो उसको भी देंगे। नहीं भाई, काफिर शुक्र करेगा तो उसको भी देंगे? नहीं, काफिर नहीं शुक्र कर सकता। काफिर को तो अल्लाह ताला ढील देने के लिए देते हैं, ठीक है, शुक्र की वजह से नहीं देते काफिर को। शुक्र जो करता है अल्लाह उसे ईमान लाने की तौफीक देते हैं। शुक्र ईमान की बुनियाद है, शुक्र से ईमान बनता है, ईमान की नेमत शुक्र से मिलती है। चले यहाँ तक तो ठीक है जी, ईमान की नेमत शुक्र से
शुक्र
मिलती है, ये भी ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। शुक्र करेंगे तो भाई शुक्र का मतलब क्या है कि अपनी अकल का सही इस्तेमाल करना, ठीक है। तो जब अपनी अकल का सही इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस, राइट, अकल इज इक्वल टू कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, तो कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर किस पर एतमाद करेंगे, किसकी बात मानेंगे? जो अल्लाह का रसूल होगा, ठीक है ना, जो अल्लाह का रसूल होगा उसकी बात मानेंगे, ना कि जो है वो किसी धोखेबाज दगेबाज किस्म के किसी इंसान की बात मानेंगे, है ना भाई। तो अकल की नेमत का सही इस्तेमाल करेंगे तो ईमान की नेमत मिलेगी, यानी अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने की नेमत मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन इसकी तफसीर है, बेहतरीन तफसीर है, ठीक है। लेकिन दूसरी क्या? शुक्र से नेमत बढ़ती है, क्योंकि जब शुक्र करेंगे तो ईमान की हिफाजत हो जाएगी। नहीं ना, अब यहाँ पे क्यों ये आप लोग जो है वो प्राइवेट के अंदर जा करके ऐसे लिख रहे हैं, ये गलत बात है। आप डांट खाने से बचने के लिए भाई डांट वाली बात क्यों करती हैं, ठीक है, सीधी बात करें और एवरीवन में करें। मुझे अब मैं फोन के ऊपर हूँ तो अब मैं इनका नाम को क्लिक करूँ, फिर उनके नाम को क्लिक करूँ, क्योंकि जी खातून जो है वो अपना नाम छुपाना चाहती हैं। क्योंकि जब शुक्र करेंगे तो ईमान की हिफाजत हो जाएगी। भाई अगर तुम शुक्र करते और ईमान लाते, ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो नहीं है कि वो तो एक यानी एक लॉजिकल कंक्लूसिव तौर पे आप कह सकते हैं कि शुक्र करने से जो है वो ईमान की तौफीक मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने तो अतफ इस्तेमाल किया है ना, वाह, वाहों का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो बस वाहों के अंदर जो है ना वो दोनों चीजें शामिल होती हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्कैटिनेटेड ही होती हैं। लेकिन बस पहले इसको लाए फिर दूसरे उसको लाए, तो इससे थोड़ा सा अहमियत का पता चल जाता है, ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा अहमियत ही का पता चलता है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत के मकासद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए ना, ठीक है, तो उसके अंदर भी दरमियान में वाओ, ठीक है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, है ना। तो चार अलग अलग बेअसत के मकासद बयान करें ना, ठीक है। तो अब चारों में ऐसा नहीं है कि पहले कुरान की तिलावत होगी, फिर तज़किया होगा, फिर जो है वो तालीम का काम होगा, फिर हिकमत का काम होगा, नहीं, वो तो सुम्मा के साथ होता है, ठीक है, या इवन फा के साथ भी कभी कभी होता है, फा या सुम्मा,
ठीक है। लेकिन वाओ का मतलब क्या होता है कि भाई चारों चीजों चारों काम किए लेकिन बस अहमियत यत्रु अलैहिम आयाति ही की ज्यादा हो गई, युज़क्कीहिम की जो है वो उसके बाद अहमियत, और तीसरे नंबर पे जो अल्लमहुमुल किताब की अहमियत हो गई, फिर हिकमत की अहमियत जो है वो चौथे नंबर पे हो गई। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा बस अहमियत का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता, चारों चीजें मुराद होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ला इन शकर तुम व आमन तुम, ठीक है, तो दोनों अहम चीजें हैं लेकिन शुक्र पहले बाद में ईमान। ठीक है, तो वो कैसे कि भाई शुक्र तुमने करना है लेकिन शुक्र कैसे करना है ये तुम खुद से फिगर आउट नहीं कर सकते, ये मैंने तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं दी कि तुम खुद से फिगर आउट कर सको कि कैसे अल्लाह का शुक्र करना है, ये तरीका तुम्हें मेरे नबियों से सीखना पड़ेगा, तो तुम्हें मेरे नबियों पर एतमाद करना पड़ेगा। जब तुम मेरे नबी की बात पर एतमाद करोगे, इसी को ईमान लाना कहते हैं, तो फिर तुम नबी से सीखोगे कि अल्लाह का शुक्र कैसे करना है, अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। ठीक है, तो फिर नबी तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें ये अकीदा अल्लाह के बारे में रखना है कि अल्लाह ताला लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, राइट, और अल्लाह का शुक्र जो है वो इस अकीदे के साथ करना है कि अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक लहू मानना है, राइट, और फिर आमाल में अल्लाह ताला का शुक्र कैसे करना है कि 5 वक्त की तुम्हें नमाज पढ़नी है, तुम्हें रोजा रखना है, तुम्हें रमजान में रोजा रखना है, और तुम्हें जो है वो 2.5% की जकात देनी है, तुम्हें जो है वो जिंदगी में एक बार हज करना है, ये अल्लाह को अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका है। तो ये कौन सिखाएगा? ये नबी सिखाएगा। इसी वजह से काफिर शुक्र ने कर ही नहीं सकता, क्योंकि काफिर ने नबी अलैहिस्सलाम से या किसी भी अल्लाह के नबी से तरीका सीखा ही नहीं, नबी को नबी माना ही नहीं, तो वो तो अपने तौर पे शुक्र करता भी है तो वो तो शुक्र अल्लाह ताला के एक्सेप्टेबल ही नहीं है, अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है ही नहीं वो शुक्र करने का। ठीक है, तो काफिर को तो अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं ना ग्रेवी में दे रहे होते हैं खाली, ठीक है, यानी दुनिया में जो है ना वो उसको बस अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, इस वजह से मिल रहा होता है, वरना तो अल्लाह ताला काफिर को एक खोटी पाई भी ना दें, एक पानी का घोंट भी ना दें, ठीक है ना, बस अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है कि काफिर को भी मिल रहा होता है, फिर उसके बाद काफिर जो है वो अपने इख्तियार से जब तौबा कर लेता है शिर्क से और कुफर से तो फिर वो ईमान में दाखिल हो जाता है। तो भाई काफिर दुनिया में अगर जिंदा ही ना रहता तो फिर वो ईमान में दाखिल होने वाले का नौबत ही नहीं आती, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, दुनिया में काफिरों को भी जिंदा रखा होता है खाना पानी पानी सब कुछ दे करके। ठीक है, तो अब ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर क्यों हुई कि ये जो औरत खाना पका रही होती है इसके दिल में अगर शुक्र का जज्बा होगा तो असल नेकी इससे सादिर हो रही होगी, खाना पकाते हुए शुक्र का जज्बा अगर इसके दिल में होगा तो अब हम सोच लें तमाम नेकियों की जड़ जो है वो शुक्र है। ठीक है, तिलावत की जड़ शुक्र, जिक्र की जड़ शुक्र, वुजू करने की जड़ शुक्र, ठीक है, अच्छे ख्यालात की जड़ शुक्र, तो अगर ये हालत शुक्र में होगी तो फिर इसके खाने के अंदर जो इसने बनाया है कितना नूर आएगा, कितना नूर आएगा, और अगर ये हालत शुक्र में नहीं होगी बल्कि हालत कुफर में होगी, राइट, वो क्या मुसीबत है मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है यार मैं तो बस खाना ही बनाती रहती हूं, ये हालत शुक्र है इसकी? ये हालत शुक्र तो नहीं है। ठीक है, तो अब ये हालत शुक्र चाहे अब इसके जो भी कॉजेज होते हैं वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हालत कुफर उसके भी मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो खुद ये बात को समझ ले जो सुन रही है कम से कम वो तो समझे ना इस बात को कि भाई हमारे इस हालत शुक्र का कितना इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी औलाद के ऊपर, हमारे घर के दूसरे अफराद के ऊपर। ठीक है, तो अगर घर के अफराद आपकी कदरदानी नहीं भी कर रहे, ठीक है, होता है ना भाई शौहर कदरदानी नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, सास जो है वो कीड़े निकाल रही है, आपके खाने के ऊपर एतराज किया जा रहा है, ठीक है, और आपको जो है वो ताने दिए जा रहे हैं, बीइंग अ हाउसवाइफ ताने दिए जा रहे होते हैं जाहिलों के, जहालत और ये सब तो है हमारे यहाँ कि ये तो हाउस वाइफ है, ये तो कुछ नहीं कर रही है, ये तो वक्त जाया कर रही है, ये तो बोझ बनी हुई है मेरे बेटे के ऊपर, ठीक है ना। तो वो जाहिल लोग हैं, उनको जाहिल समझें, उनको बेवकूफ समझें, और अल्लाह की खातिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे घर अता फरमाया, अल्लाह ताला ने जो है ना वो खाने के लिए जो है वो खाना अता फरमाया, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई, अल्लाह ताला ने शौहर अता फरमाया, ठीक है। तो अब मैं अल्लाह की खातिर जो है ना वो अल्लाह की इन नेमतों के ऊपर शुक्र करके खाना बनाऊं, तो उस खाने के अंदर जो मेरे शुक्र की वजह से अनवारात आएंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला का फैसला ये हो जाए कि मेरी सास जो है ना वो उसके दिल में भी जहालत की जुल्मत जो भरी हुई है जिसकी वजह से वो जाहिलाना बातें करती है, तो वो अनवारात जो है ना वो उसके अंदर जा करके इस जहालत की जुल्मत को बाहर निकाल दें। मेरे शौहर के अंदर जो जहालत की जुल्मत भरी हुई है, मेरे खाने के अनवारात उसके अंदर जब जाएंगे मेरे बनाए हुए खाने के, मेरे शुक्र की इस नेमत की वजह से, शुक्र के इस अमल की वजह से, तो उसके अंदर से वो जहालत की जो जुल्मत है वो निकल जाएगी, राइट। तो हालत शुक्र में रहना, ठीक है, इससे अनवारात पैदा होते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, हालत शुक्र में रहने से अल्लाह ताला हालत कुफर में जाने के हालात से महफूज कर देंगे। ये नाशुक्री ही है जिसकी वजह से औरतें जहन्नुम में मर्दों से ज्यादा होंगी, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक मौजूद है, ठीक है, नाशुक्री की वजह से ना। तो भाई बेशक दुनिया वालों ने आपकी कदर नहीं करी, लेकिन दुनिया का जो परवरदिगार है तो उसके यहाँ तो ऐसा मामला नहीं है ना कि आप उसके लिए, आप उसकी तरफ सोचेंगी, आप उसका जिक्र करेंगी, आप उसकी खातिर जो है वो आमाल करेंगी तो वो आपकी नाकदरी करेगा। अल्लाह को भी क्या यही समझ रखा है, अपने शौहर की तरह समझ रखा है क्या, राइट, या अपने सास की तरह समझ रखा है अल्लाह ताला को? नहीं, तो अल्लाह ताला को तो अल्लाह समझना है ना, ठीक है, कदरदान समझना है ना, ठीक है, अपने वादों का पक्का समझना है ना, अपने वादों को पूरा करने वाला समझना है ना। तो अल्लाह के वादे क्या हैं, वो कुरान मजीद में से मिलेंगे ना, ठीक है, कुरान मजीद से ताल्लुक बनाएं, जब मौका मिले कुरान मजीद पढ़ें ताकि अल्लाह के वादों का पता चले और इस बात की याद दहानी होती रहे रहे कि ला युखलिफुल्लाहु वादा, कि वो अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से फिर शुक्र करना आसान हो जाएगा और शुक्र के नतीजे में फिर बाकी सारी खैरें पैदा होंगी, जिस तरह कुफर के नतीजे में, नाशुक्री के नतीजे में सारे शर पैदा होते हैं, उसी तरह शुक्र के नतीजे में सारी खैरें पैदा होती हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला बात की समझ, अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम।